الحمد لله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن جلد نمبر 3 میں سے، اور جو ابھی آیات پڑھی گئیں تو ان کے معارف و مسائل ہم پڑھ رہے تھے، پیج نمبر 373 کے اوپر تھے ہم پچھلے ہفتے کی کلاس میں. اس کے آگے اگرچہ کہ ہم جمعے کے درس کے اندر بات کر ہی چکے ہیں، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ آڈینس ہوتی ہے، مرد بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، اس میں انداز گفتگو بھی ذرا مختلف ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ صرف خواتین کی کلاس ہے، تو اس کے اندر بھی ہم اس کو پھر سے پڑھیں گے، اگرچہ کہ شاید ذرا مختلف کوئی موضوع آ جائے، بہرحال دہرائی تو ہوگی ہی انشاءاللہ. اور دہرائی جو ہوتی ہے یعنی تکرار، ریپیٹیشن، تو اس سے جو ہے وہ بات سمجھنا بھی زیادہ آسان ہوتا ہے اور اس کو یاد رکھنا بھی زیادہ آسان ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کو عمل میں لے کے آ سکیں. اصل مقصد تو عمل ہی ہے نا، لیکن علم اس کے لیے شرط ہوتا ہے، اور علم اسی وقت حاصل ہوگا جب بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور سمجھ میں آنے کے بعد ذہن میں باقی بھی رہے گی، تب وہ علم کہلائے گا، اور تب اس کے اوپر عمل کرنا ممکن ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ثواب جو ہے وہ عمل پہ ملے گا. علم حاصل کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے بعد جو عمل کرنا ہے تو اس کے اوپر زیادہ ثواب ملتا ہے. بہرحال تو تفسیر جو چل رہی تھی پیج 373 کے اوپر، تو اس میں ہم نے وزر کے لفظ کا جو ہے وہ، یا زر کا جو لفظ ہے، اس کا مفہوم سمجھا تھا کہ گناہ کے کام کو اور گناہ کی محفل کو تو چھوڑنا ہے، تو وہ دل میں گناہ کے بارے میں ناراضگی، گناہ کے بارے میں نفرت، گناہ کے بارے میں ندامت، ان کیفیات کے ساتھ اس کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور تم باطن میں کرتے ہو. تو وہاں پر ہی صرف ترک کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ترک کر دو گناہ، ٹھیک ہے، بلکہ وزر کا لفظ استعمال، یعنی زر کا ہی لفظ استعمال کیا. اور زر کا مطلب کیا پڑھا؟ کہ کسی چیز سے ناراض ہو کر کے اس کو چھوڑ دینا. تو گناہ سے ناراض ہونے کا مطلب کیا؟ کہ جو عمل کیا تھا نا گناہ کا، تو اس کو سمجھنا کہ یہ میرے نقصان کا باعث تھا، اس کی وجہ سے میری زندگی کے اندر جو بے سکونی تھی اور جو ذلت و رسوائی تھی اور جو بے برکتی تھی، وہ اس گناہ کی وجہ سے تھی. تو جس وجہ سے آپ کی زندگی میں اتنی برائیاں اور مصیبتیں ہوں، تو کیا اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس سے آپ ناراض نہیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، جس کو بھی ایک وجہ سمجھیں گی اپنی مصیبتوں کا، تو اس سے تو ناراض ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. فرق صرف یہ ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم گناہ کو اپنی ناراضگی کا سبب سمجھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم اس کو اپنی اب سوری گناہ کو ہم اپنی مصیبت کا سبب سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اس سے ناراضگی کیسی، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم اپنی مصیبت کا سبب سمجھتے ہیں اس سے خوب ناراض ہوتے ہیں، رائٹ؟ सास को मुसीबत का सबब समझते हैं, खुद सास से नाराज होते हैं, बहू से को अपनी मुसीबत का सबब समझते हैं, खूब बहू से नाराज होती हैं सासें, ठीक है। और जो भी हो, सास बहू हो या जो भी हो, उसको हुकूमत से नाराज होते हैं सारे पाकिस्तानी, हुकूमत को अपनी मुसीबत का सबब समझते हैं, हुकूमत से नाराज होते हैं, ठीक है। पार्टी से, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से नाराज होते हैं, किसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर से नाराज होते हैं, क्योंकि उसको अपनी मुसीबत का सबब समझते हैं, लेकिन अपने गुनाह को अपनी मुसीबत का सबब नहीं समझते, ठीक है। तो फिर क्यों नाराज होंगे गुनाह से? तो समझ 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 की बात है ना, समझ हम समझ जाए तो फिर गुनाह से नाराज होना शुरू हो जाएंगे। और हमारा परवरदिगार जो हुक्म करता है वो क्या है कि गुनाह से नाराज हो, ठीक है, और गुनाह की सोहबत से नाराज हो। वज़र अत्तख़ज़ू दीनहुम लअबा वलहवा, ठीक है। आगे फरमाया इसके बाद इरशाद फरमाया, वग़रतहुमुल हयातु दुनिया, यानी उनको दुनिया की चंद रोजा जिंदगी ने गुरूर और धोखे में डाला हुआ है। ये उनके मर्ज का असली सबब बयान फरमा दिया कि उनकी सारी सरकशी और नाफरमानी का असल सबब यह है कि दुनिया ही की चंद रोजा जिंदगी पर मफ्तून हुए हुए हैं, यानी उस फितने में मुबतला हुए हुए हैं, दुनिया की चंद रोजा जिंदगी जिसका कि कुछ पता नहीं कि अब खत्म होगी कि तब खत्म होगी, कुछ पता नहीं, ऐसी धोखेबाज किस्म की चीज है दुनिया की जिंदगी कि बताती भी नहीं है और खत्म हो जाती है, चली जाती है। हत्ता के अगर नहीं भी जाती, जिंदा भी रहते हैं तो उसमें भी पता नहीं होता कि कैसे हालात बदलने वाले हैं, कुछ पता नहीं होता अगले लम्हे क्या चीज पेश आने वाली है, ठीक है। किसी को एक्सीडेंट होता है तो पहले बता के होता है कि हाँ जी एक्सीडेंट होने वाला है, उसकी टांग टूट जाती है, उसका जो है वो सर फट जाता है, उसको कोमा में चला जाता है कोई इंसान एक्सीडेंट होकर के, कितना बड़ा तगैयर आ जाता है दुनिया की जिंदगी के अंदर, कुछ पता नहीं होता कि अब अगले लम्हे क्या होने वाला है। किसी का मोहब्बत करने वाला दुनिया से चला जाता है और पहले से पता नहीं होता कि ये होने वाला है। तो हम इस दुनिया की जिंदगी के बारे में धोखे में पड़े हुए हैं ना, कि जैसे अच्छे हालात चल रहे हैं बस ये ऐसे ही चलते रहेंगे, और दूसरी तरफ जिनके बुरे हालात हैं तो वो भी इस धोखे में पड़े हुए हैं कि जिस तरह बुरे हालात चल रहे हैं तो वो भी ऐसे ही चलते रहेंगे। हालांकि ना बुरे हालात का पता कि वो कब तक चलते रहेंगे, ना अच्छे हालात का पता कि वो कब तक चलते रहेंगे, ठीक है। तो धोखे की इंतहा है ये, ऐसी चीज के बारे में हम धोखे में मुब्तला हैं और उसको परमानेंट, और उसको जो है ना वो पता नहीं क्या अच्छी चीज और खुशी होने वाली चीज समझ के बैठे हुए हैं, ठीक है। हालांकि जो जिस चीज के बारे में मुब्तला होना चाहिए था धोखे में नहीं बल्कि खुशी में, वो तो आखिरत की जिंदगी थी ना, हमेशा हमेशा की जिंदगी जिसके अंदर कोई मौत नहीं आएगी, तो उसके बारे में खुश होना चाहिए था कि हाँ वहां पर जाकर के फिर मौत नहीं है, या उसके बारे में खौफ में मुब्तला होना चाहिए था कि वहां पर जाकर के जो है वो अगर खुदा न खास्ता जहन्नुम में चले गए तो वहां पर क्या क्या करेंगे जाके। तो दुनिया की जिंदगी में जो धोखे के बारे में जो धोखा है ना, ये असल सबब है कि जिसकी वजह से हम इस किस्म की बेवकूफी की हरकतें करते हैं कि दीन को ही लाभ और लहव बना लिया, जो हमारे लिए जिंदगी थी, जो हमारे लिए सुकून था, इत्मीनान था, उसी को खेल तमाशा बना दिया, ठीक है। और दूसरी बात जो जुमे के दर्स में भी आप लोगों को बताई थी कि ये तो हो गया अपने बारे में ना कि हम धोखे में मुब्तला ना हो, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी दूसरे को देखें कि वो दुनिया की जिंदगी के बारे में धोखे में मुब्तला हो गया है, तो अब उसके साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए, या उसके साथ हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, या हम उसको जो है वो लान तान करना शुरू कर दें, उसको जो है वो मारना पीटना शुरू कर दें, वो कैसे कैसे दुनिया की जिंदगी के बारे में तू धोखे में मुब्तला हो गया, क्यों हो गया, मारो इसको, पीटो इसको, गालियां दो इसको, और उसको जो है वो बुरा भला कहो, और दुनिया की जिंदगी के बारे में धोखे में मुब्तला हो गया। बल्कि नहीं, उसके बारे में दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करता है ये जुमला कि देखो कैसे धोखा मिल गया है, वरना अगर इसको समझ में आ जाए ना बात, तो ये कभी भी धोखे में मुब्तला ना हो। ठीक है, जो हमारा अजीज अकारिब कोई धोखे में मुब्तला हो जाता है तो हम उसके ऊपर अफसोस करते हैं ना, उससे नफरत तो नहीं करते ना, और हम ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उसको बात समझा करके इस धोखे से निकाल लें, राइट। और हम यही समझते हैं ना कि क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है इस वजह से वो धोखे में मुब्तला हो गया है, अगर इल्म आ जाएगा तो धोखे से निकल आएगा, राइट। तो इसी तरीके से अल्लाह के बंदों का भी यही मामला है कि उनके पास इल्म नहीं है, हमें यही सोचना चाहिए कि उनके पास इल्म नहीं है इस वजह से धोखे में मुब्तला हो गए, इल्म आ जाएगा तो धोखे से निकल आएंगे। तो अब हमें इल्म पहुंचाने की मेहनत करनी चाहिए कि हम इल्म समझ अगले बंदे तक पहुंचाएं, ठीक है, खैरख्वाही की नियत के साथ ना, ताकि वो धोखे से निकल आए। दीनुन नसीहा, दीन तो सरासर खैरख्वाही है। तो असली सबब डायग्नोज करना भी सबसे अहम चीज होती है किसी भी मर्ज का इलाज करने के लिए, और दूसरी बात ये कि असली सबब जब समझ में आ जाए ना तभी इंसान इलाज कर सकता है, वरना फिर उल्टा जो है वो आप मरीज से नफरत करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उससे जो है ना वो भागना ही शुरू कर देते हैं उल्टा, भाई बजाय इसके इलाज करें आप इसको। अच्छा, इस आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों को दो हुक्म दिए गए। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात जो दिल में आई थी जब ये हम पढ़ रहे थे कि दुनिया की जिंदगी का जो धोखा इंसान को लग जाता है तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसका एक इलाज, मुख्तलिफ इलाज बताए, लेकिन उसका एक इलाज क्या बताया, कब्रिस्तान जाना, ठीक है ना, एक इलाज क्या बताया, कब्रिस्तान जाना, क्योंकि कब्रिस्तान जा करके जब कब्रें देखते हैं, ठीक है, तो इंसान को अपना कुछ तो ख्याल आता है ना कि अच्छा मैं भी तो एक दिन यहाँ पे होऊंगा, ठीक है। अच्छा, कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ लंबी लंबी कब्रें नहीं होती, बल्कि कब्रिस्तान के अंदर मुख्तलिफ साइजों की कब्रें होती हैं, छोटे बंदे की कब्र होती है, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स की भी कब्रें होती हैं कब्रिस्तान के अंदर, ठीक है, तो वो इन्फेंट्स की कब्रें भी नजर आती हैं। तो क्या समझ में आता है कि मौत का कोई उम्र नहीं है कि जब 70-80 साल के होंगे तभी मरेंगे, देखो ये जो था ना ये बच्चा था ये भी मर गया, 14 साल का 12 साल का जो बच्चा बच्ची था उसकी उम्र उसकी उसका कद भी छोटा ही होता है ना, तो उसकी कब्र भी छोटी बनती है, और जो न्यू बॉर्न इन्फेंट होता है तो उसकी तो बहुत ही छोटी सी कब्र बनती है, तो कब्रिस्तान के अंदर तो सारी कब्रें होती हैं ना। तो इससे भी ये याद आता है कि भी उम्र की कोई कैद नहीं है कब्र मरने के लिए, हम किसी वक्त भी मर सकते हैं ना। अच्छा, औरतों को नबी अलैहिस्सलाम ने कब्रिस्तान जाने से मना किया, वो क्यों, ठीक है, पता है ना, कब्रिस्तान जाने से औरतों को मना फरमाया, ठीक है, तो उसकी वजह, अच्छा उसमें भी है कि भाई शुरू में मना किया बाद में जो है वो वगैरह इस तरह की चीज है, लेकिन हमारे उलमा से भी हमने यही सुना और यहाँ पर भी सऊदी अरब के अंदर भी है ना वो यही मौकफ है कि जी औरतें कब्रिस्तान ना जाए, ठीक है, तो उसकी वजह जो है वही उलमा बयान करते हैं कि जी औरत जो है ना वो वहां पे जाएगी तो अपने अजीज के कब्र पे जाएगी ना, ऐसी खाली यानी साइट सीइंग के लिए तो कब्रिस्तान ही जाएगी, अपने किसी रिश्तेदार के कब्र पे हाजिरी देने के लिए जाएगी, इसाले सवाब करने के लिए जाएगी, ठीक है, तो वहां पे जाकर के ना वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकेगी और जो है वो एक तमाशा बन जाएगा, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस है कब्रिस्तान, कोई प्राइवेट प्लेस तो नहीं होती, तो वहां पे औरत का पर्दा भी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है, तो औरतों को कब्रिस्तान जाने से रोका जाता है, सही है यहाँ पर। अच्छा, अब मजे की बात ये करनी थी कि ये बात तो अपनी जगह पे ठीक है ना कि जी औरतों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक मुल्क दुनिया के अंदर, ठीक है, तो उस मुल्क के अंदर जो है वो हर चीज में औरत को आजादी, हर चीज में औरत जो है वो दीन से आजाद, उसको प्रमोट किया जा रहा, हर चीज में औरत को दीन से फारिग किया जा रहा, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक, पर्दे वर्दे की कोई जरूरत नहीं है, गलत किया जो पर्दा किया, गलत किया जो अबाया पहना, उबार उतारो इन सब चीजों को, ठीक है ना, और वर्क प्लेस के अंदर भी, जॉब्स के अंदर भी औरतों को मर्दों से ज्यादा भरने की मेहनतें हो रही हैं। ठीक है, सड़कों के ऊपर भी औरतें हर जगह मौजूद, हत्ता हत्ता के दुकानों दुकानें नहीं बल्कि कॉफी शॉप्स के अंदर भी हर जगह औरतें मौजूद, हत्ता के रात रात भर जो है वो औरतें कॉफी शॉप के अंदर खाली कॉफी पीने नहीं आए बल्कि कॉफी शॉप चलाने वाली भी, दुकानें चलाने वाली भी औरतें, हर जगह औरतें। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे तो दीन खत्म हो गया ना, जानी जिस जगह की बात हो रही है वहां तो दीन खत्म हो गया। ठीक है, पर्दा खत्म, औरत का जो है वो घर का सिलसिला खत्म, औरत जो है वो सड़कों पर है, औरत जो है वो बाजारों में है, औरत जो है वो दुकानों में है, औरत जो है वो हर जगह मौजूद है। ठीक है, लेकिन एक जगह ऐसी है कि जहां पे औरत का दाखला बिल्कुल ममनू, सख्ती के साथ ममनू, वो कौन सी जगह? एक मुल्क में जिसमें औरत की आजादी सबसे ज्यादा, हर चीज से आजाद, हर चीज की जो है वो खुली छूट, जो चाहो करो, लेकिन उसी मुल्क के अंदर एक जगह ऐसी है कि जहां पे औरत नहीं जा सकती, सख्ती के साथ नहीं जा सकती, वो कौन सी जगह है? इन्होंने लिखा रौदा मुबारक, रौदा मुबारक पे नहीं जा सकती, वहां तो जा रही है वहां तो बड़ी जा रही है, खुल गया रौदा मुबारक, तो फिर कौन सी जगह रह गई कि जहां पे औरत आज भी नहीं जा सकते, कौन सी जगह? जी ठीक है, इन्होंने बात को समझा, इन्होंने जवाब लिखा है कब्रिस्तान। ठीक है, एक जगह ऐसी है कि जहां पे औरत नहीं जा सकती, अगर चली गई तो उसको निकाला जाता है वहां से, कौन सी जगह? कब्रिस्तान। ठीक है, यानी दीन जो है वो सिर्फ कब्रिस्तान के लिए रह गया, इसका मतलब ना नबी अलैहिस्सलाम की हदीस जो है ना वो कब्रिस्तान पे तो अप्लाई होती है और कहीं पे अप्लाई नहीं होती, भला ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो नहीं, ये भी आप ही बता दें, औरत को हर जगह जाने की आजादी है, कोई नहीं रोक सकता उसको कहीं भी जाने से, लेकिन कब्रिस्तान, ऐसा क्यों भाई? क्या समझ में आता है, ऐसा क्यों? ताकि वो गुनाह से तौबा ना कर ले, राइट? ताकि उसको धोखा लगा रहे, दुनिया की जिंदगी से धोखा लगा रहे। ठीक है, आपको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, समझ अता फरमाए, जल्दी ना क्या करें जवाब देने की अगर बात समझ में ना आ रही तो, कहती है क्यों? ठीक है, तो यानी उसको अपनी मौत याद ना आ जाए कहीं, कहीं उसको अपनी मौत याद ना आ जाए। ठीक है, और क्या बात, और क्या रीजन? ठीक है, उसका पर्दा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कब्रिस्तान जाके उसका पर्दा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, नहीं तो पर्दा जो है वो क्या दूसरी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा? और केओस, केओस जो है वो क्या, कौन सा केओस, कैसा केओस? अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है ना, अल्लाह ताला ने दिया है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, सो दैट शी डज नॉट क्राई एंड वेल टू मच, आपको भी अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। खैर चलें, आगे चलते हैं। तो इस आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों को दो हुक्म दिए गए हैं। अव्वल ये कि ऐसे लोगों से किनारा कशी इख्तियार करें जिनका बयान मजकूरा जुमले में आ चुका है, दूसरा ये कि सिर्फ उन लोगों से किनारा कशी और एराज भी काफी नहीं है बल्कि ईजाबी तौर पर यह भी जरूरी है कि कुरान के जरिए उनको नसीहत भी करते रहें। ठीक है, तो नसीहत जो है ना ये कुरान मजीद को इस्तेमाल करते हुए करने की जरूरत होती है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है वज़क्किर बिही, कुरान मजीद को इस्तेमाल करते हुए जो है वो नसीहत करो। ठीक है, और दूसरा क्या, एक और भी जगह ना सूरह काफ के अंदर है, वदक्किर बिल कुरआन मन यखाफु वईद। ठीक है, कि तुम कुरान के जरिए से नसीहत करो मन यखाफु वईद, जो कि वईद से डरता है। ठीक है, नसीहत करो, वदक्किर फइन्ना ज़िक्रा तन्फ़ुल मोमिनीन, ईमान वालों को, जो मानने वाले हैं उनको नसीहत करते रहो। ठीक है, अच्छा दूसरा नसीहत का यहाँ पर जो जिक्र है, ये तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कौन लोग हैं जो कि कुरान मजीद की आयात के अंदर एतराज करते हैं, जो यहूदूना फी आयातिना वाले लोग हैं, उनको भी नसीहत करते रहो। उनको नसीहत, वो तो मानते ही नहीं है कुरान मजीद को, तो कुरान मजीद से उनको नसीहत कैसे करो? जो कुरान मजीद को नहीं मानते उनको उस बात के साथ नसीहत करो जिसको कि वो मानते हैं, ठीक है? जैसे मक्का मुकरमा के जो मुशरिकीन थे वो नबी अलैहिस्सलाम के कुरान को नहीं मानते थे, लेकिन कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलाम को और भी तो इल्म दिया गया है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में इल्म दिया गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या मक्का मुकरमा के मुशरिकीन नहीं मानते थे? मानते थे, ठीक है? तो उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात से नसीहत करो। नबी अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात कहाँ पे मिलते हैं? कुरान मजीद के अंदर, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्म नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई किताब ही नहीं पढ़ी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे ना, किताबें नहीं पढ़ी हुई थी, बिल्कुल बगैर किसी इल्म के अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा था, ठीक है? ना किसी उस्ताद के सामने जाके बैठे कि वो आपको जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में सारी बातें बता दे, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सारी बातें बता दे। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ना किसी टीचर के सामने बैठाया, ना किसी किताब को पढ़ने का मौका दिया कि नहीं पढ़ना लिखना नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास सारा का सारा इल्म कहाँ से आया? कुरान से आया, ठीक है? वही ये मतलू जो कि कुरान है, और वही गैर मतलू जो कि कुरान के साथ साथ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम को बताते रहते थे, ये सारा का सारा इन आप सल्लम के पास है, ठीक है? तो जो मुशरिकीन है मक्का थे वो कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह के अहकाम होते थे उनको तो नहीं मानते थे, लेकिन कुरान मजीद के अंदर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा था उसको तो मानते थे ना, वो तो पता था इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने अपने आबाओ अजदाद से सीखा हुआ था इन बातों को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है? तो कुरान से नसीहत करो का मतलब क्या, कि जो कुरान के अहकाम को मानते हैं उनको कुरान के अहकाम बताओ कि देखो तुम कुरान को मानते हो ना, कुरान जो सॉरी जो कुरान को मानते हैं उनको कुरान के अहकाम बताओ, ठीक है? कि भाई तुम कुरान को मानते हो ना, तो देखो कुरान मजीद के अंदर ये हुक्म है, तो क्यों नहीं मानते इस वाले हुक्म को? जब पूरे कुरान को मानते हो तो कुरान के अंदर जो हुक्म है उसको क्यों नहीं मानते, ठीक है? और जो पूरे कुरान को नहीं मानते लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य उनको बताओ। देख लें इस आयत, ये जो मजमू आयात है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके फौरन बाद क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकयात हैं। वह इज कॉल इब्राहिम उल अबी आजरा अतत्तखिदु अस्नामन आलिहा, ठीक है? तो मकसद क्या है बात करने का? मकसद ये समझाना है कि जब किसी से आप बात करते हैं ना, तो किसी कॉमन ग्राउंड की बुनियाद पे बात करते हैं, कॉमन ग्राउंड जो कि आपके और उसके दरमियान कॉमन हो, जिसके ऊपर आप भी मुत्तफिक हो वो भी मुत्तफिक हो, वहां से लेके बात चलते हैं, ठीक है? तो हम चूंकि आमतौर पर मुसलमानों से ही बातचीत किया करते हैं, तो मुसलमानों से बातचीत करेंगे, तो भाई मुसलमान अपने आप को मुसलमान क्यों कहता है? क्योंकि वो कुरान को मानता है कि ये अल्लाह की किताब है, ठीक है? तो अब उससे जो है वो कुरान मजीद के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उसके जरिए से बात करो। वज़क्किर बिही वज़क्किर बिल कुरआन, ठीक है? और जो अगर नहीं मानता कुरान मजीद को नाउज़ बिल्ला, उससे आपको बात करनी पड़ रही है, तो उससे फिर कोई दूसरा कॉमन ग्राउंड इस्तेमाल करें, ठीक है, नसीहत करने के लिए। अच्छा, फरमाया कि ईजाबी तौर पर यह भी जरूर। अच्छा, इस आयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों को दो हुक्म दिए गए हैं। अव्वल ये कि ऐसे लोगों से किनारा कशी इख्तियार करें जिनका बयान मजकूरा जुमले में आ चुका है, और दूसरे ये कि सिर्फ उन लोगों से किनारा कशी और एराज भी काफी नहीं है, बल्कि ईजाबी तौर पर यह भी जरूरी है कि कुरान मजीद के जरिए उनको नसीहत भी करते रहें, ठीक है? तो दरस कुरान जो है वो हमारे लिए एक दरस कुरान है, क्योंकि हम कुरान मजीद की जुबान से वाकिफ नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो इतने नहीं होते कि बस कुरान सुन करके हमें समझ में आ जाए इसका क्या मतलब है, और फिर उसकी जो मजीद तफसीलात हैं वो तो हमें और भी नहीं पता होती। तो इस वजह से दरस कुरान जो होता है ना, उसके अंदर फिर तफसीर होती है, तर्जुमा भी होता है, उसके अंदर जो है वो शान नुजूल भी होता है कि भाई ये आयत किस मौके पे नाजिल हुई थी, ये आयत क्यों नाजिल हुई थी, इसके अंदर क्या मआरिफ और इसके अंदर क्या मसाइल हैं, शरीयत के कौन कौन से उसूल जो हैं वो इस वाली आयत से निकलते हैं, ये सब कुछ हमें दरस कुरान से मिलता है। ठीक है, तो वज़क्किर बिल बिल कुरान के अंदर फिर दरस कुरान समझा जाएगा। ठीक है, और ये दरस कुरान ही असल कुरान से हिदायत हासिल करने का तरीका भी है। ठीक है, क्योंकि इवन अगर कोई अरबी जुबान जानता भी हो तो वो भी कुरान मजीद की आयत की अरबी सुन करके, खाली अरबी में कोई आयत सुन करके उसको ये नहीं समझ में आएगा कि इसकी उसकी जाती जिंदगी के साथ क्या रेलेवेंस है, उसके पर्सनल हालात के साथ इसका क्या ताल्लुक है इस कुरान मजीद की आयत का, जब तक कि वो इसके आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट ना समझ सके। ठीक है, तो कुरान मजीद के जरिए से उनको नसीहत करते रहे का मतलब क्या कि कुरान मजीद के बाकायदा जो तफसीर होती है उसको इस्तेमाल करते हुए नसीहत करते रहे। ठीक है, और अल्लाह ताला के अदाब से डराते भी रहे। आखिर आयत में इस अदाब की तफसील इस तरह बयान फरमाई है कि अगर उनकी यही हालत रही तो ये अपने किरदार बद के जाल में खुद फंस जाएंगे, क्योंकि गुनाह करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि गुनाह का अजाब ना आए, तो उनको गुनाह से रोकने की मेहनत करना, कोशिश करते रहना, तो ये खैरख्वाही है। आयत में इस जगह अंतुबसरा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है कि जिसके मानी कैद हो जाने और फंस जाने के हैं। ठीक है, तो ये भी एक एक सिंपैथी ही क्रिएट करता है ना हमारे दिल में कि भाई अपने जो साथ रहने वाले इंसान हैं उनकी फिक्र करो, वरना वो फंस जाएंगे, वो दलदल में फंस जाएंगे, क्योंकि गुनाह का अंजाम जो होता है वो अल्लाह का अजाब होता है, और अल्लाह का अजाब ऐसा होता है कि जिसके अंदर इंसान फंस जाए तो अब उसमें से निकल नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ताला उसको फिर रहम खाकर निकाल ना ले उसमें से, वरना वो नहीं निकल सकता अजाब में से। ठीक है, तो अंतुबसला का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो फंस जाएंगे अपने गुनाहों के अजाब में। इस वजह से हर वक्त फिक्र में रहना चाहिए, हर वक्त लड़ाई झगड़ा नहीं करते रहना चाहिए किसी से दीन के मामले में, भाई दीन की दावत देनी है तो अब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अब जो है वो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बल्कि फिक्र में रहना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा तौर तरीका, कोई मौका, कोई मोहलत उसकी तलाश में रहना चाहिए कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उन तक बात पहुंचाऊंगा, मैं उन तक बात पहुंचाऊंगी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो ये किनारा कशी का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि भाई जो गुनाहों के अंदर पड़े हुए लोग हैं उनसे आप किनारा कशी इख्तियार कीजिए। ठीक है, तो किनारा कशी का मतलब ये नहीं है ना कि उनको हमेशा के लिए अबैंडन कर दीजिए, बल्कि इसका मतलब क्या है, यानी ये भी कह रहे हैं ना कि उनके साथ नसीहत भी करते रहिए, तो नसीहत भी करते रहिए और किनारा कशी भी इख्तियार कीजिए, तो ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते। अगर आप उनसे अलग हो जाएंगे तो आप उनको नसीहत नहीं कर सकते, अगर आप उनको नसीहत करने के लिए जाएंगे तो फिर आप उनसे अलग नहीं हो सकते, तो क्या मतलब फिर ये भी करें और वो भी करें, अलग भी हो जाएं और नसीहत भी करते रहें, भाई कैसे ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि किनारा कशी का मतलब क्या है कि उनसे कल्बी तौर पर किनारा कशी इख्तियार कीजिए। ठीक है, क्या मतलब कि उनके गुना, अच्छा कल्बी तौर पर किनारा कशी का मतलब एक और ये भी निकल सकता है हमारे जहन में कि अब उनके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, उनके बारे में फिक्र करना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो मेरा उनके साथ कोई दिली ताल्लुक है नहीं तो मैं उनके बारे में क्यों फिक्र करूं, भाई मैं उनके बारे में क्यों परेशान हूं, मैं उनके बारे में क्यों खैरख्वाही सोचूं, क्योंकि मेरा तो कल भी ताल्लुक उनके साथ खत्म हो गया। ठीक है, बल्कि ये मतलब नहीं है इसका। ठीक है, कल्बी ताल्लुक खत्म करने का मतलब क्या है कि उनके गुनाहों के लिए दिल में चाहत खत्म होनी चाहिए, गुनाहों की तरफ मायल होना दिल से बिल्कुल खत्म कर देना है। ठीक है, बल्कि उनको मुसीबत में मुबतला समझना है कि वो जो गुनाहों में मुबतला है वो मुसीबत में मुबतला है अपने गुनाहों की वजह से, ठीक है। तो उनके गुनाहों से नफरत करनी है, उनसे नफरत नहीं करनी बल्कि उनके गुनाहों से नफरत करनी है। उनके लिए तो फिक्र होनी है दिल के अंदर, उनके लिए तो खैरख्वाही होनी है दिल के अंदर, लेकिन गुनाहों से नफरत करनी है, ठीक है। इस मसले को चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो हमारे लिए समझना, लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। हमारे नहीं समझ में आता है, ये बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए इस बात को डिस्कर्न करना, डिफ्रेंशिएट करना कि ये कैसे हो सकता है कि किसी शख्स के गुनाहों से नफरत की जाए लेकिन उस शख्स से नफरत ना की जाए, ये कैसे हो सकता है भाई। ये हो सकता है। अल्लाह ताला, एक जुमला याद रखें कि अल्लाह ताला हमें कभी भी किसी ऐसी चीज का मुकल्लफ नहीं बनाता जो कि हमारे इख्तियार में ना हो। अल्लाह ताला कभी भी हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं डालता जिसको के अदा करना हमारे लिए मुमकिन ही ना हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुरान मजीद अजीम शान के अपने अल्फाज हैं, अल्लाह ताला के अपने अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला किसी नफ्स के ऊपर उसके वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसका मतलब यही है कि जो उसके लिए मुमकिन ही ना हो अल्लाह ताला उससे इसकी तवक्को रखता ही नहीं। अब यहां पर जो ये तवक्को है कि तुम उनसे किनारा कशी भी इख्तियार कर लो, वज़र लज़ीन, और साथ साथ जो है वो तुम उनको नसीहत भी करते रहो। अब अगर ये चीज हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है तो अल्लाह ताला ने कैसे ये हुक्म हमें दे दिया। अब इसके दो ही नतीजे, दो ही जवाब हैं इसके। पहला जवाब, नाऊज बिल्ला सुम्मा नाऊज बिल्ला, कि अल्लाह ताला ने हम पर जुल्म किया, ठीक है। अल्लाह ताला ने हम पर जुल्म किया, हमें उस चीज का मुकल्लफ बना दिया जो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। और दूसरा जवाब क्या है इसका, मुमकिन है, ऑफ कोर्स ये हमारे लिए मुमकिन है, लेकिन लेकिन क्या आपके लिए नमाज पढ़ना मुमकिन है, लेकिन अगर आपको नमाज पढ़नी आती ही ना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई। जी, आपके लिए नमाज पढ़नी मुमकिन है, अल्लाह ने हुक्म दिया अकीम सलात, तो हमारे लिए नमाज पढ़नी मुमकिन थी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अकीम सलात, लेकिन अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता फिर क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ना नमाज पढ़ना, इल्म हासिल करना पड़ेगा नमाज पढ़ने का, तब आप वो काम कर लेंगी। लेकिन कोई जाहिल रहे, कोई कहे नहीं मुझे तो नहीं आता नमाज पढ़ना, तो मैं, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है नमाज पढ़ना क्योंकि मुझे आता ही नहीं है नमाज पढ़ना, फिर क्या कहा जाएगा उसको। उसी तरीके से अगर हमें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे गुनाह से नफरत करनी है और गुनाहगार से नफरत नहीं करनी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि तुमने करना है ये काम, तो फिर सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सीखना। और हम कहेंगे नहीं मैं तो जाहिल हूं, मैं तो जाहिल ही रहूंगी सारी जिंदगी, मैंने तो सीखना ही नहीं है, तो फिर सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह का तो हुक्म था ना, उसके ऊपर अमल नहीं किया और अपने जहालत को जो है वो बहाना बनाया, तो उसके ऊपर फिर पिटाई होती है। और जो हो रही है, हमें इतनी जो पिटाइयां हो रही हैं हर किस्म की, कभी कहीं किसी से पिटते हैं, कभी किसी से पिटते हैं, कभी घर में पिटते हैं, कभी बाहर पिटते हैं, कभी इनफरादी पिटते हैं, कभी इज्तिमाई पिटते हैं। क्यों? इसलिए कि हम जाहिल रहना पसंद करते हैं, हम सीखना नहीं चाहते कि अल्लाह का हुक्म क्या है, उसके ऊपर कैसे अमल करना है, ठीक है। तो हम भी तो फिर अपने गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, इसी वजह से तो अल्लाह के हुक्म को नहीं समझता किसी काबिल कि उसको सीखें, उसको समझें। तो आगे फरमाया कि चूंकि दुनिया में इंसान, अच्छा एक और चीज थी कि ये तो खुद सीखना है ना, जो बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने मेच्योर बन कर दिया है उनको तो खुद सीखना है, लेकिन बच्चों को हमारे बच्चे हैं, तो अब वो किनारा कशी कैसे अख्तियार करें, गुनाह की सोहबत से और गुनाहगार लोगों से किनारा कशी अख्तियार करें, तो उनको तो फिर बच्चों, उनको तो फिर बड़ों को उनको अलग रखना होगा, बड़ों को उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड करना होगा और बुरे माहौल से उनको बचाना होगा, ठीक है, ताकि उनके दिल में गुनाहों की मोहब्बत ना पैदा हो जाए, उनके दिल में गुनाहों की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। अगर गुनाहों की मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो गई, अब वो गुनाहों से नफरत नहीं कर सकेंगे, वो किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर आपके घर के अंदर आपने अगर टीवी का माहौल नहीं रखा, ठीक है, लेकिन अब कोई आपके घर में आ जाता है, वो जो है वो हर वक्त टीवी टीवी टीवी, और आजकल तो टीवी जो होती है वो हाथ में होती है, ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको टैब दिया हुआ होता है, उनको जो है वो फोन दिया हुआ होता है, वो बैठे उसके ऊपर जो है वो फिल्में देख रहे हैं, तो मौसीकी सुन रहे हैं, तो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। अब आपका बच्चा जो है वो तो ये तो चीज ही ऐसी बनाई गई है, जो स्क्रीन होती है ये तो इंसान की तबीयत को अट्रैक्ट करने की चीज होती है, इसको बनाए ही ऐसे किया है कि ये खींचती है बच्चों को अपनी तरफ, बड़ों को भी अपनी तरफ खींचती है, और बच्चों को ज्यादा और भी ज्यादा खींचती है, ठीक है। तो अब ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो इसका सद्देबाप करें, कहीं उन उनके बच्चों के दिल में भी इनकी मोहब्बत पैदा ना हो जाए, क्योंकि अगर हो गई अब वो नहीं बच सकेंगे इनसे, अब वो इन चीजों से नहीं बच सकेंगे, ठीक है। दूसरे बच्चे हैं म्यूजिक सुन रहे हैं, आपका बच्चा वो म्यूजिक की तरफ लपकेगा, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक बनाई ही ऐसी चीज गई है कि जो कि इंसान को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो अब ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इन चीजों से बचाएं, नहीं बचाएंगे तो फिर ये बच्चे किनारा कशी कैसे इख्तियार करेंगे इन चीजों से। अब बचाने के लिए तरीका सीखना पड़ेगा भाई, बुराइयां सीखनी पड़ेंगी, टैब की, फोन की, वीडियो गेम्स की बुराइयां सीखनी पड़ेंगी, ताकि बुराइयां बता करके अपने बच्चों को उनसे दूर रखें, ठीक है। और जिस तरह से पिछली किसी क्लास में बात भी हुई थी, मुझे याद है हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के फौरन बाद जो पहली क्लास हुई थी उसके अंदर ये बात हुई थी कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी के दिल में किसी चीज की नफरत कैसे पैदा करनी है, ठीक है। दुनिया के मामलों में हम खूब इसके ऊपर अमल करते हैं कि नंद बहुत ज्यादा जो है वो सर चढ़ गई है, तो शौहर के दिल में नंद की नफरत पैदा करनी है, तो नंद की बुराइयां बयान करना शुरू कर देती हैं, ताकि शौहर के दिल से नंद जो है ना वो उतर जाए। लेकिन दीन के लिए हमें यह काम करना नहीं आता कि हम गुनाह की बुराइयां बयान करें, गुनाह की बुराइयां जो है वो खोल खोल करके सामने रखें, ताकि गुनाह की नफरत पैदा हो जाए हमारे औलाद के, कम से कम चलो शौहर नहीं सुनता, औलाद तो औलाद होती है ना, तो औलाद के दिल में गुनाहों की नफरत पैदा हो। और दूसरा ये भी होता है कि जो लोग ये बुराई कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी उनके ऊपर चढ़ जाएं, हम बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव होकर के, बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे होकर के जो खेलते हैं ना, उसकी वजह भी यही होती है कि हमारे पास खुद इल्म नहीं होता, तो दूसरे लोग हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं हर वक्त, तुमने अपने बच्चों को जो है वो महरूम करके रखा हुआ है, तुम अपने बच्चों को टैब नहीं दे रही हो, तुम अपने बच्चों को जो है वो टीवी से भी दूर की हुई हो, तुम अपने बच्चों को जो है मौसीकी से भी दूर करी हुई हो, तुम्हारा बच्चा तो महरूमी की जिंदगी गुजार रहा है, और ये माशाल्लाह दीनदार खातून जो है ये चुप करके बैठी हुई सुनती रहती है, भीगी बिल्ली बनी रहती है ये, राइट। और जो म्यूजिक वाली आंटी होती हैं और डांसिंग वाली आंटी होती हैं और टैब्स वाली आंटी होती हैं, वो इनके ऊपर चढ़ी रहती हैं हर वक्त, और ये भीगी बिल्ली बन करके जो है वो चुप करके खामोश कर रहे हैं, उनको उनको कुछ जवाब ही देना नहीं आता, उनको पता ही नहीं है कि अच्छा मैं क्या क्या कहूँ उनको आगे से, क्यों, इसलिए कि जाहिल है। बुरका चढ़ा लेने का मतलब ये को थोड़ी होता है कि इल्म भी मिल गया, जहालत के साथ भी तो इंसान बुरका पहन सकता है ना, बुरका तो पहनी हुई है, पता नहीं है बुरका क्यों पहनी हुई है, राइट। तो अब जो बेबुरके वाली हैं वो चढ़ी हुई है इनके ऊपर हर वक्त, इनको पता ही कुछ नहीं कि इनको क्या करना है, क्या जवाब देना है, क्या समझाना है। तो हम क्यों जाहिल रहते हैं, हम क्यों इल्म नहीं हासिल करते? ये मुसीबत, एक और मुसीबत आई हुई है कि जहां इल्म का नाम लो फौरन आलम कोर्स आ जाता है बीच के अंदर, हालांकि वहां से आपको ये चीजें नहीं पता लग रही होती, आलम कोर्स के अंदर ये बातें नहीं समझ में आ रही होती बिल्कुल भी। इल्म हासिल करें, वाय क्यों बुरका कर रही हैं, क्यों जो है वो टैब्स से अपने बच्चों को बचा रही हैं, क्यों म्यूजिक जो है वो बुरी चीज है, क्या नुकसान है इसके अंदर, गुनाह क्या होता है, उससे क्या नतीजा निकलता है इंसान की जिंदगी के अंदर और आखिरत के अंदर, इसका इल्म हासिल करें, पढ़ना शुरू करें, सुनना शुरू करें, सोचना शुरू करें, लिखना शुरू करें, तब इल्म हासिल होगा। वरना हमेशा भीगी बिल्ली बन करके चुप करके जो है वो दूसरों के इन्फ्लुएंस के अंदर जिंदगी गुजारती रहेंगी, और जाहिर है फिर जब दूसरों दूसरे आपके पास चढ़े रहेंगे तो कब तक आप रेजिस्ट करेंगी, कब तक अपने बच्चों को बचा सकेंगी उनसे, बिलाखिर आपने सरेंडर कर देना है उनके सामने। बेवकूफी का सवाल ना क्या करेंगे आप, उन्होंने लिखा है ना, कई दफा इस तरह की बातें आप कर भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं इसके जवाब। बहरहाल तो ये इल्म हासिल करें, जहालत के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। कितनी औरतें बिल्कुल जाहिल रहती हैं और बड़ा अपने आप को दीनदार समझ रही हैं, बड़ा भाई आप अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकती, अपने औलाद की ईमान की हिफाजत नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि आप जाहिल हैं, और इल्म का जो है वो आपको यही कि क्या इल्म हासिल करूं, कौन सा इल्म हासिल करूं, कैसे इल्म हासिल करूं। गैर मुकल्लद बनने वाला इल्म हासिल करने का बड़ा शौक हुआ है लोगों को, कुरान हदीस पढ़ना है, क्यों कुरान हदीस पढ़ना है, ए? ताकि गैर मुकल्लद बन सकूं, अपनी फिर चलाऊंगी मैं उसके अंदर, मैं कुरान की आलमा बन गई हूं, मैं जो हूं वो हदीस की आलमा बन गई हूं, पता कुछ है नहीं इसका मतलब क्या होता है। आजकल आलिम और आलिमा बनना जो है वो गैर मुकल्लद बनना के मुतरादिफ है, स्पेशली जो है वो इस तरह के ऑनलाइन सिलसिलों के अंदर, मदारिस के अंदर तो फिर जो है ना वो चित्र लगा लगा करके जो है वो बंदा बनाते हैं, वरना तो पता नहीं क्या अपने आप को समझना शुरू होंगे, आलिम बन गए जी, आलमा बन गए जी, फिर अपनी अपनी तकलीद, अपने नफ्स की तकलीद चल रही होती है उसके बाद। तो इल्म हासिल करने का मतलब तो समझे ना, इल्म हासिल करने का मतलब क्या होता है, अल्लाह का हुक्म क्या है, गुनाह क्या है, उसका नुकसान क्या है, आजकल किन हालात से हम गुजर रहे हैं, औलाद की क्या चैलेंजेस हैं, औलाद की तरबियत और तालीम कैसे करनी है, घर को कैसे बनाना है, घर को कैसे चलाना है, शौहर के साथ कैसी जो है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी है, सास के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसी करनी है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, बच्चों को तालीम कैसे देनी है, बच्चों को तालीम कैसे देनी है, ये सीखा है किसी माँ ने आज कि बच्चों को कैसे तालीम देनी है? दूसरों के हवाले करो वो देंगे तालीम, मैंने को थोड़ी देनी है तालीम, तो बच्चा दूसरे के हवाले, वो जो चाहे करे अपने बच्चे के साथ, इसके बच्चे के साथ, इस तरफ तो तवज्जो ही नहीं है ना हमारी, हम तो बस अल्लाह रहम करे, फिर मर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की यही चल रहा है बस पूरी दुनिया के अंदर, दवाएं करते चले जा रहे हैं, मर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों भाई? अल्लाह ताला ने कोई मर्ज ऐसा नहीं बनाया जिसकी दवा नहीं बनाई, नबी अलैहिस्सलाम ने बताया ना हमें कि लिकुल्ल दाइन दवा, उन हर मर्ज की दवा मौजूद है, असर क्यों नहीं करती? क्योंकि जो मर्ज था आपने उसको वो वाली दवाई नहीं दी, वो कैसे असर करेगी भाई? मर्जी आइडेंटिफाई नहीं किया कि मर्ज क्या है, तो दवा कौन सी, आप कहां से आप सही वाली दवा देंगे उसको? उल्टी दवाएं दिए चले जा रहे हैं, मर्ज कुछ है, दवा कुछ और दिए चले जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा ना, फिर मर्ज बढ़ता गया, जूझूं दवा की, और समझ में आ रही है? ये इल्म हासिल करना है कि मर्ज है क्या, समझे कि नहीं, कि मर्ज है क्या, इसका इल्म हासिल करना है। फिर उसके बाद ये कि इस मर्ज की कौन सी वाली दवा होती है, ठीक है, और फिर इस दवा को प्रेस्क्राइब कैसे करना है, और उस दवा को जो है वो क्या कहते हैं उसको, दवा पिलाना जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एडमिनिस्टर कैसे करना है इस ड्रग को। बात समझ में आ रही है? ये तीन है, अगर बहुत परेशानी हुई हो कभी, क्या क्या पता नहीं क्या बोले चले आ रही है, तो तीन बातें लिख लीजिए, इनका इल्म हासिल करना है। नंबर वन, मर्ज क्या है, राइट, एलिमेंट है क्या, मर्ज है क्या। नंबर दो, इस मर्ज की जो कि आपने आइडेंटिफाई किया, इसकी दवा कौन सी वाली है, इसकी दवा कौन सी वाली है। ये नहीं कि फार्मेसी के अंदर बहुत सारी दवाएं रखी हैं, तो चलो कोई दवा उठा करके ले आते हैं और जो है वो पिला देते हैं, क्योंकि भाई दवा तो है ना, राइट। ये नहीं पता था कि इस मर्ज की कौन सी दवा है, तो फार्मेसी में बहुत सारी दवाएं रखी हुई थी, आपने उधर से वो उठा करके कोई दवा उठाई और मरीज के मुंह में, यही चल रहा है आजकल भाई। हर मर्ज की अलग दवा होती है ना, हर मरीज के लिए अलग दवा होती है, उसके मर्ज के हिसाब से दवा होती है। ये तो नहीं कि कोई भी दवा उठा करके आप मरीज को ठुका दें, ठीक है। तो इसका इल्म हासिल करना है कि किस मर्ज की कौन सी दवा है, और फिर उसके बाद उस दवा को कैसे जो है वो मरीज को पिलाना है, ये इल्म हासिल करें, तब औलाद बचेगी, तब औलाद कुछ बनेगी, ठीक है ना। वरना जिस तरह पहले चल रहा है मामला, मत बढ़ता गया जू जू दवा की, ये बढ़ता ही चला जाएगा, आपके घर के अंदर भी यही मामला चलता रहेगा, ठीक है। नाउ पीपल आर गेटिंग देयर डॉटर्स टू अचीव टीचिंग डिग्रीज इन अर्ली एजुकेशन चिल्ड्रन साइकोलॉजी सो दैट दे कैन टीच देयर चिल्ड्रन दे आर फिजिकली स्पेशली फाइन विद इट बिकॉज दे आर ऑनलाइन डिग्रीज, हाउ कैन वी एक्सप्लेन व्हाट्स रॉन्ग विद दिस टू देम। आप नहीं जानती हैं हमारे कितने स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं, हम खुद करवा रहे हैं, ठीक है। तो भाई डिपेंड ऑन हाउ दे आर डूइंग इट, व्हाई दे आर डूइंग इट, ठीक है। तो इन ऑफ इटसेल्फ जो है ना वो नहीं है भाई, अर्ली एजुकेशन चिल्ड्रन साइकोलॉजी, अब दीन से नहीं समझ रही है तो दुनिया के, और दूसरी और भी रीजन है इसकी जो कि हम करवा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को खुद, ठीक है। तो उन रीजंस को समझने की आप मेहनत करें, तब आपको बात समझ आएगी। हर चीज मुतलकन गलत नहीं होती है, उसकी रीजंस की वजह से वो गलत होती है, कुछ चीजें मुतलकन गलत नहीं होती, हर चीज मुतलकन गलत नहीं होती, कुछ चीजें होती और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं। चले टाइम हो गया है काफी ज्यादा क्लास का, उम्मीद है कि बात कुछ समझ में आई होगी, यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। वाह अलहमदुल्ला।